ध्रुव ने शीघ्र ही आस्था को जांचकर एक इंजेक्शन दिया और दादाजी की ओर देखकर बोला, दादाजी घबराने वाली कोई बात नहीं है, भाभी केवल डर के कारण बेहोश हुई हैं, थोड़ी देर में होश आ जाएगा। ध्रुव के ये कहते ही दादाजी ने राहत की सांस ली। अचानक अरमान के कमरे से बंदूक चलने की आवाज़ आई। दादाजी और चारों ने अरमान के कमरे से बंदूक की आवाज़ सुनकर घबरा गए। आहान तो मानो पत्थर की मूर्ति बन गया था। वे सब अरमान के कमरे की ओर दौड़े। दादाजी पसीने से तरबतर हो गए थे, उनके शरीर में इतनी ताकत नहीं बची थी कि वे दौड़कर जल्दी अरमान के कमरे में पहुंच पाते। फिर भी एक नज़र आस्था की ओर देखते हुए वे शीघ्र ही अरमान के कमरे में पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि अरमान का शानदार मास्टर बेडरूम कबाड़ खाने में तब्दील हो चुका था। उन सबके बीच में अरमान घुटनों के बल बैठा था, एकटक उस दिशा में देख रहा था जहाँ उसने लगातार 3 फायर किए थे। दादाजी धीरे धीरे वहां तक गए। ये सब देखकर उन्हें राहत मिली, कम से कम अरमान को कुछ नहीं हुआ था। लेकिन अरमान के हाथ से खून निकल रहा था, ये बात किसी से छिपी नहीं रही। दादाजी जो मुश्किल से वहां तक पहुंचे थे बुरी तरह सांस लेने लगे थे। आकाश, सुमित, ध्रुव जल्दी से दादाजी को संभालने लगे, जबकि आहान पत्थर सा जमा रहा। उसे ऐसा लगा मानो उसने अपने अरमान भाई को हमेशा के लिए खो दिया हो। अरमान शुरू से ही आहान का बहुत ख्याल रखता था। आहान अरमान का कज़िन था, लेकिन बचपन से ही वो अरमान के साथ रहा था। अपने माँ बाप से ज़्यादा अगर उसे किसी से प्यार था तो वो सिर्फ अरमान से था, इसलिए अरमान की ये हालत देखकर उसका शरीर पत्थर सा जम गया था। दादाजी के सांस लेने में तकलीफ देखकर तीनों की घबराई हुई आवाज़ें अरमान के कानों तक पहुँची। आकाश ने थोड़ी तेज़ आवाज़ में अरमान से कहा, ये क्या किया है तूने? अरमान देखो दादाजी को क्या हो रहा है, अरमान होश में आओ, यहाँ देखो। तीनों के थोड़ा चिल्लाने पर अरमान होश में आया और दादाजी को सांस लेने में तकलीफ देखकर डर से उसकी हालत खराब होने लगी। उसने जल्दी से ध्रुव से कहा, ध्रुव जल्दी करो, गाड़ी निकालो, हमें अभी हॉस्पिटल जाना है। वो तीनों अरमान को देख रहे थे, उन्हें अरमान पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उन्हें लग रहा था कि दादाजी और आहान की ये हालत अरमान की वजह से है। दादाजी को अस्पताल ले जाते वक्त अरमान की नज़र आहान पर पड़ी तो वो थोड़ी देर के लिए रुका और तुरंत उसके पास जाकर उसे गले लगा लिया। अरमान का साथ पाकर आहान फूट फूट कर रोया। कुछ पल सभी थोड़ी देर के लिए भावुक हो गए, लेकिन दादाजी की बढ़ती हुई सांसों का एहसास होते ही सबका ध्यान फिर से दादाजी पर चला गया और सभी जल्दी ही अस्पताल जाने के लिए रवाना हो गए। अरमान और बाकी सब जब दादाजी को सीढ़ियों से नीचे ला रहे थे, एक एक करके सबकी नज़र आस्था पर पड़ रही थी। आस्था अभी भी बेहोशी में सोफे पर लेटी हुई थी। सबसे आखिर में अरमान की नज़र आस्था पर पड़ी। उसने बड़े ही गुस्से और नफरत से आस्था की ओर देखा। वो दादाजी की हालत का जिम्मेदार सिर्फ आस्था को मान रहा था। आकाश ने समझदारी दिखाते हुए देव को सिंघानिया मेंशन में रुकने के लिए कहा था, क्योंकि किसी भी पल आस्था को होश आ सकता था और अगर आस्था को होश आता है तो घर में सबको ना पाकर वो परेशान हो सकती थी। इसलिए उन्होंने देव को समझा दिया कि आस्था के होश में आने पर वो उसे बता दे कि सब ठीक है, सिर्फ दादाजी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इसलिए उन्हें अस्पताल ले गए हैं। ऐसा कहकर वे लोग वहां से निकल गए थे। अरमान उन चारों समेत दादाजी को लेकर अस्पताल की ओर रवाना हो गया था। अरमान सिंघानिया की गाड़ी के आगे पीछे कम से कम 4 से 5 गाड़ियां और चल रही थीं। उन सभी में उनके सुरक्षा गार्ड थे। अरमान सिंघानिया की सुरक्षा बहुत सख्त थी, जिसकी वजह से कोई भी आम आदमी उस तक नहीं पहुंच पाता। वे सब जल्दी ही शहर के मशहूर अस्पताल में पहुंच गए थे और दादाजी को इमरजेंसी रूम में इलाज के लिए ले जाया गया। दूसरी ओर उनके जाने के कुछ देर बाद आस्था को होश आने लगा। आस्था की आंखें खुलते ही वो हड़बड़ाकर उठकर बैठ गई। उसकी आंखों के सामने बार बार अरमान का गुस्से वाला चेहरा दिखाई दे रहा था। आस्था का सिर बहुत दर्द कर रहा था। उसे अपने आसपास सन्नाटा महसूस हुआ। आस्था ने अपने चारों तरफ देखा। उसे एहसास हुआ कि वो इस बड़े हॉल में अकेली है। आस्था ने अपने चारों तरफ देखा, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। उसने हल्के से आवाज़ लगाई, दादाजी? दादाजी ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर आस्था ने आहान जी, आकाश जी, ध्रुव भैया सभी को आवाज़ लगाना शुरू कर दिया, लेकिन किसी ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि उस वक्त कोई भी वहां मौजूद नहीं था। आस्था उन्हें ढूंढते हुए दरवाजे से बाहर जाने लगी। अचानक देव ने उसका रास्ता रोक लिया। आस्था उस अनजान लड़के को देखकर हैरान हो गई, क्योंकि वो दिखने में बहुत ही आकर्षक और स्मार्ट था और उसने बहुत ही अच्छे ढंग से कपड़े पहन रखे थे, जो इस बात की गवाही दे रहे थे कि वो कोई खास आदमी था। तब आस्था ने उसकी ओर देखकर कहा, जी आप कौन हैं? जिस तरह से उसने अनजाने में अरमान के साथ बदतमीजी की थी, इस बार आस्था थोड़ी सावधानी बरत रही थी, इसलिए वो किसी के साथ भी इस तरह से बदतमीजी नहीं करना चाहती थी। इसलिए वो देव से सीधे सीधे पूछने लगी थी कि आखिरकार आप कौन हैं और आप इस तरह से मेरा रास्ता क्यों रोक रहे हैं। देव ने एक नज़र आस्था की ओर देखा, फिर विनम्रता से अपना सर झुका दिया। आखिरकार उसकी लेडी बॉस उसके सामने थी। फिर वो आस्था की ओर देखकर बोला, मैम इस वक्त घर पर कोई भी नहीं है और आप इस तरह से बाहर नहीं जा सकती हैं। देव के ये बताते ही आस्था हैरान हो गई और बोली, घर पर कोई नहीं है मतलब? अभी थोड़ी देर पहले तो दादाजी, आकाश जी और सुमित भैया, ध्रुव जी और साथ ही साथ आहान भी यहाँ मौजूद थे, तो फिर कहाँ गए सबके सब? जानबूझकर आस्था ने अनुमान का नाम नहीं लिया। देव मन ही मन में सोचने लगा कि मैडम ने सबके नाम तो ले लिए, लेकिन बॉस का नाम क्यों नहीं लिया? लेकिन उसने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा और बोला, जी वो एक्चुअली मैडम, दादाजी की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी तो इसीलिए उन्हें हॉस्पिटल ले गए हैं और सभी उन्हीं के साथ गए हैं। ये सुनकर आस्था पूरी तरह से घबरा गई और बोली, ये आप क्या कह रहे हैं? क्या हुआ है दादाजी को? कौन से हॉस्पिटल ले गए? मुझे अभी हॉस्पिटल जाना है। आस्था के ये कहते ही देव ने उसे मनाते हुए कहा, सॉरी मैडम, लेकिन अरमान सर ने सख्त निर्देश दिए हैं कि आप घर से बाहर नहीं जा सकती हैं। तब आस्था ने गुस्से से कहा, नहीं नहीं, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं। मैंने कहा ना आपसे कि मुझे अभी हॉस्पिटल जाना है दादाजी को देखने के लिए, मतलब मुझे हॉस्पिटल जाना है। अगर किसी को किसी तरह की कोई मदद की जरूरत होती थी तो वो बिना सोचे समझे आगे बढ़कर सबकी मदद किया करती थी, लेकिन यहाँ तो उसके दादा ससुर की बात थी तो भला वो कैसे पीछे रह सकती थी? क्योंकि जब से वो घर में आई थी केवल दादाजी ही थे जिन्होंने सबसे ज्यादा प्यार और विश्वास आस्था पर दिखाया था। इस तरह से दादाजी की तबीयत के बारे में सुनकर आस्था काफी ज्यादा बेचैन हो गई थी। इसलिए आस्था ने जल्दी से देव से कहा, देखिए अगर आप मुझे हॉस्पिटल लेकर नहीं जाना चाहते हैं तो मैं अकेले चली जाऊंगी। ऐसा कहकर आस्था ने देव का हाथ हटाते हुए आगे बढ़ने लगी। देव पूरी तरह से मजबूर हो गया, लेकिन वो इस तरह से आस्था को अकेले नहीं जाने दे सकता था। इसलिए देव ने आस्था से कहा, रुकिए मैडम, आप इस तरह से अकेले बाहर नहीं जा सकती हैं। अगर आप हॉस्पिटल ही जाना चाहती हैं तो मैं आपको लेकर चलता हूँ। ये सुनते ही आस्था ने अपनी गर्दन हाँ में हिला दी और देव के साथ जल्दी ही आस्था भी अस्पताल की ओर रवाना हो गई थी।
दूसरी ओर दादाजी को एक बार फिर दिल का दौरा पड़ा था। डॉक्टर ने ये बात सबको बता दी थी। जैसे ही अरमान ने दादाजी के दूसरे दिल के दौरे के बारे में सुना तो वो बहुत परेशान हो गया था और वो इसका जिम्मेदार पूरी तरह से आस्था को मान रहा था। ना तो आस्था को वहां इस तरह से देखता और ना ही वो गुस्से से अपना कंट्रोल खोता, ना दादाजी अरमान की ऐसी हालत देखकर एक बार फिर सदमे में जाते। इतना सब सोचकर अरमान का गुस्सा आस्था पर और भी ज्यादा बढ़ गया था। ध्रुव, जो उस वक्त दादाजी के साथ मौजूद था, वो नम आंखों के साथ बाहर आया और अरमान की ओर देखकर बोला, दादाजी की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अरमान ब्रो, मैंने आपसे पहले ही कहा था, दादाजी को जब पहले दिल का दौरा पड़ा था उसी वक्त हमें दादाजी का ख्याल रखना चाहिए था। दादाजी को हर वक्त परेशानी और तनाव से दूर रखना होगा, तभी उनकी तबीयत में सुधार हो सकता है। लेकिन आज फिर से दादाजी को दूसरा दिल का दौरा पड़ा है और मुझे बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अगर दादाजी को एक बार फिर दिल का दौरा पड़ा तो मुझे नहीं लगता कि इस बार हम उन्हें बचा पाएंगे। ये सब सुनकर अरमान ने अपना आपा खो दिया और तुरंत ध्रुव का गिरेबान पकड़ लिया और बोला, क्या तू पागल हो गया है? तू हमारे दादाजी के बारे में बात कर रहा है? तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की? चाहे कुछ भी हो जाए, दादाजी को कुछ नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं। ध्रुव, ये बात अपने दिमाग में अच्छी तरह से बैठा लो, समझे तुम? आकाश, सुमित आगे आए। दोनों ने मिलकर अरमान से ध्रुव का गिरेबान छुड़ाया। ध्रुव भी थोड़ा भावुक हो गया और बोला, हर बार दादाजी की तबीयत सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से खराब होती है अरमान भाई, आप चाहे माने या ना माने। लाइक, रिव्यू और फॉलो करें प्लीज़।